छुपाना छुपाना छुपाना। आपने और फूफी फिलोन ने उसकी माँ को पागल बना दिया और क्या क्या हुआ मालूम?
कैसी जिंदगी है कि हर घड़ी औलाद को तफसील बताई जाए।
आप मेरे वालिद हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे इस बड़े ने अपने भाई की औलाद को हमसे छुपाकर क्यों रखा, क्यों हक गुनाह कर दिया, उसकी मां को बेघर क्यों कर दिया। अब मुझे हर चीज पर शक है, यहां तक कि आपका अहमद रजा के साथ वो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट और आपकी मजलूमियत पर भी मुझे शक है कि इसमें सच्चाई
है। सच्चाई है, जाहिर है कि है।
बेवकूफ आदमी, मेरी आंखों की तरफ देखो, अंदर घुस गई है। मेरी बेटी मुझे धमकाती है, मेरा बेटा मुझे धमकी देता है, 8 अरब का कर्ज सर पर चढ़ गया है, मेरी जिंदगी गंदगी का ढेर बन गई है।
दरअसल कावे की मां अपने शौहर की मौत की वजह से पागल हो गई थी, बस यही।
डैड, अगर आप झूठ बोलेंगे तो मुझे चकनाचूर कर देंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि सच क्या है बताएं। कावे की मां की दीवानगी और मौत का ताल्लुक आपसे है या नहीं? डैड, आपको मेरी मरहूम मां की कसम, सच बताएं, आपका हाथ था इसमें? मेरे डैड, मैं आपका गुलाम हूं, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं
बस एक बार मेरा और आपका फरीजा मालूम हो जाए कि क्या है।
आपका इस मामले में हाथ था या नहीं था? मैं इस मामले की गहराई तक जाऊंगा, नरगिस तक, कावे तक, और वहां तक जाऊंगा जहां तक सच्चाई का पता चले। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप खुद सच्चाई बता दें। आपका हाथ था या नहीं?
बहुत मुबारक हो।
सब कुछ ठीक हो जाएगा, यह अच्छी बात है कि अब हम मियां बीवी हैं, ठीक है ना?
मेरे दिमाग में प्लानिंग ज्यादा है। सबसे जरूरी बात यह है कि मैं एक काम यह करना चाहती हूं कि मेरे डैड के दिल में तुम्हारी जगह बिल्कुल पक्की हो जाए। मुझे मालूम है कि डैड को तुम बुरे नहीं लगते हो, अगर बुरे लगते तो इजाजत नहीं देते। सारी दुनिया एक तरफ हो जाती फिर भी इजाजत नहीं देते। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए कि डैड एक बार कावे बोले तो उनका दिल बाग बाग हो जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम सब कुछ भुला दो, अपना माजी और कल सब कुछ।
भुला दो, ठीक है, मतलब कि अपनी माँ को भुला दूं, नरगिस जान को भुला दूं, हाँ, अपना बचपन, तन्हाई और सड़क छाप होना भुला दूं। अच्छी सोच है
तुम ना? बीमार लोगों की तरह लगते हो, तुम्हें खुद को सताना क्यों पसंद है?
इत्मीनान रखो, मैं वादा करता हूँ जब तुम्हारे डैड राजी होंगे तभी करेंगे, ठीक है? ठीक है, पहले चलते हैं एक अच्छे से रेस्टोरेंट में, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के मौके पर अच्छा सा खाना खाते हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है मेरी बीवी, अब हंसो भी, हंसो ना। ये हुई ना बात।
फ्रामर्जी ने अपने घर के टेलीफोन से जो आखिरी नंबर लगाया था वो शाइस्ता का मोबाइल नंबर था।
परवेज शाइस्ता।
जी नहीं जनाब, बाबक शाइस्ता।
मैं घर गई थी, देखा तुम वहां नहीं हो, यकीन था कि यही मिलोगे।
हाँ, ये जगह हमेशा से पुरसुकून रही है।
काव्य और रोया ने निकाह कर लिया है।
यहां की खामोशी अच्छी है, मुझे खामोशी की जरूरत है।
जानती हूँ, मैं अपने शौहर को अच्छी तरह पहचानती हूँ। जानती हूँ कि जब कहा कि खामोशी की जरूरत है तो उसे दूर रहना चाहिए, मगर इस मर्तबा हालात में फर्क है, इस कदर फर्क कि इस खामोशी को तोड़ने की जरूरत है।
चलो अपने घर लौट चले।
तुम हार गए,
फिर कभी दोबारा मुझसे ये बात मत कहना। मैं हारा नहीं बल्कि हैरान और परेशान हूं। मैं डैड के बारे में जो भी सोचता था, अभी जो कि हैं उससे बिल्कुल अलग हैं।
माफ करना कि डैड तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं है।
क्या मतलब? बात करने का ये कौन सा तरीका है?
ऐसा नहीं कि जब हालात ठीक हो तभी उनके साथ रहो तुम।
सच में? जब मैं घर वापस लौटा तो हालात बहुत खराब थे, खतरा सर पर था। मेरी माँ तो मर ही चुकी थी, 50 लोग घर पर धावा बोल चुके थे, डैड हवालात में थे और रोया माँ के गम में खुद को हलकान कर रही थी। नहीं, उस वक्त हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन अब बहुत हो गया। ये तो हरगिज नहीं, उन्होंने अब तक एक जिंदगी नहीं बल्कि दो दो जिंदगी को तबाह किया, जबकि उनके मासी को
मासी जो कुछ भी हो अभी वो तुम्हारे वालिद है, उनको तुम्हारी जरूरत है। बाबा को उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं तुमको वापस लेकर आऊं।
हाँ, वो हमेशा उस चीज को देखते हैं जिसकी उनको जरूरत है। जब वो एहसास करते हैं कि उनको तुम्हारी जरूरत है तब वो तुमसे बात करते हैं, जब वो एहसास करते हैं कि उनको जरूरत है तब वो मेरी बच्ची को देखते हैं, जब वो एहसास करते हैं कि जरूरी है तब वो मुझे अपने घर से निकाल बाहर करते हैं, जब वो जरूरी समझते हैं तो कावे की माँ को पागलपन और मौत की हद तक पहुंचा देते हैं, जब वो जरूरी समझते हैं तब बिन माँ के बच्चे कावे को बड़ा करते हैं। समसामी अंकल के
बहुत हो गया, किन चीजों को देख रहे हो? उन चीजों को जिनकी तुम्हें जरूरत है, जिन्हें तुम पसंद करते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे डैड बिल्कुल आईने की तरह हो, मासूम हो। नहीं, नहीं है वैसे, मगर फिर भी तुम्हारे डैड हैं। ऐसे डैड जिनकी खसूसियात तुमने बयान की, वो पानी पानी हो चुके हैं, शर्मिंदा हैं, तन्हा हैं।
बहुत अच्छा, उनको सजा मिलनी चाहिए।
तुम उनको सजा देना चाहते हो? तुम हो कौन? तुम हो कौन जो इस कदर जोश में आकर सजा देने की बात कह रहे हो कि देनी चाहिए? कहो, अगर कोई दूसरा ये बात कहता तो मैं एतराज नहीं करती, लेकिन तुम पर एतराज करूंगी मैं। तुम उनके बेटे हो और वो तुम्हारे बाप हैं। माना कि तुम्हारे बाप सजा देने के लायक है, ठीक है, मगर तुमसे मतलब नहीं है। तुम अदालती कानून नहीं हो, खुदा नहीं हो तुम, तुम बेटे हो, तो फिर बेटे का फर्ज निभाओ। बेटे होने का फर्ज यह है कि अपने डैड के साथ रहो, उनको तुम्हारी जरूरत है, अभी जरूरत है तुम्हारी। उन्होंने मुझे तुम्हें वापस लाने को कहा है। बाबा, तुमने वादा तोड़ दिया। जाऊं जानम, कुर्बान जाऊं जानम। अच्छा 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 मेरा बच्चा,
नहीं आया? नहीं आया। इस घर को मैं पहले जैसा कर दूंगा। उठो उठो और खिड़कियां खोल दो। इस घर में ताजी हवा आने दो, इस घर में रोशनी आने दो। उठो उठो और हंगामा करो। रोया और कावे को फोन करो कि रात के खाने पर यहां आ जाएं। मेरी बीवी को फोन करो और रात के खाने पर यहां बुला लो। इस घर को रोशनी की जरूरत है, इस घर को उम्मीद की जरूरत है। उठो मेरी बच्ची, उठो।
हेलो सलाम, घर के रास्ते में हूँ, क्या हुआ? ठीक है आऊँगी। फातिमा थी कह रही थी रात के खाने पर डैड के यहाँ जाना है।
चले?
मैं सोच रही थी कि नरगिस जान के पास चले।
वो नहीं है, मशहद में है। तुम्हारे डैड की तीसरी शर्त यही थी ना कि वो ना रहे। क्यों? मैंने उनको मशहद भेज दिया, अपने दिल के चैन को मशहद भेज दिया। आज रात जब तुम्हारे घर जाएंगे तो खाने की टेबल पर अपने डैड से शादी की बात करना मत भूलना।
हमने ये बात खत्म कर दी थी ना?
मुझे कुछ याद नहीं है।
कावे
कावे, क्या क्या तुम मुझे छुपा कर रखना चाहती हो?
तुम्हारी आवाज बहुत जल्दी ऊंची हो गई है, अभी जल्दी है।
क्या तुम मुझे छुपा कर रखना चाहती हो?
इसका क्या मतलब है?
मतलब मालूम है? तुम्हारे डैड को यह बताते हुए शर्म आ रही है कि मैं उनका दामाद हूं।
ये क्या बेवकूफ वाली बातें हैं?
यही हकीकत है। तुम्हारे डैड बगैर किसी तकरीब के निकाह को अंजाम देना चाहते हैं। आखिर क्यों? मैं जानता हूं तुमको भी बुरा महसूस हो रहा होगा।
तुम मुझे जज्बाती करना चाहते हो?
जज्बाती क्या है? मैं सिर्फ अपनी बीवी के लिए तकरीब करना चाहता हूं, क्या यह बुरा है? हां, मुझे पूरा यकीन है तुमको भी जिल्लत महसूस हो रही है। जिल्लत महसूस हो रही है इसलिए मेरी बातों को अपने डैड के दिल के लिए दबा रही हो।
ऐसा कुछ भी नहीं है।
ऐसा नहीं है? फिर साबित करो, दिखाओ। आज रात खाने की टेबल पर शादी की तकरीब के बारे में बात करो। ठीक है? ठीक है?
हाँ? ठीक है।
ठीक है?
ठीक है, लेकिन एक शर्त है। एहतराम के साथ, नजरें झुकाकर, जिद किए बगैर।
खुदा,
हेलो
हेलो सलाम कमर खानम
हुजस्ता वहाँ नहीं आई
सलाम नहीं मगर
नहीं ऐसा लगता पानी बनकर जमीन में समा गई
मैं कह रही थी कि शायद पूना के साथ हो पूना को फोन किया
सलाम
तुम्ही ने अस्पताल में फोन किया था
हाँ
तुम्हारा ऐसा कौन सा काम था जिसका ताल्लुक मेरे शौहर की मौत और जिंदगी से है ऐसी कौन सी बात थी जो फोन पर नहीं बता सकते थे
मैं आपको बताऊंगा लेकिन पहले आप अपने उस दोस्त को क्या नाम था उसका पूना पूना को पहले ढूंढने चलिए जल्दी कीजिए बराए मेहरबानी
माँ माँ माँ
यहाँ हम लोग नमाज पढ़ते हैं बेटी अपने जूते उतार लो
मोहसिन कहाँ है
दुकान पर है वो मेरी बात सुनता नहीं है कि कैंप से जाकर हिसाब किताब कर ले और कार्ड ले ले
आखिर जिस दुकान में सामान ना हो वो किस काम की
सब ठीक हो जाएगा
मैं आ गई हूँ सब कुछ ठीक कर दूंगी
खुजस्ता के बारे में क्या खबर है उसके शौहर के बारे में
कोई उम्मीद नहीं है लोग बता रहे हैं कि कोई उम्मीद नहीं है ये 10 लाख हैं मोहसिन को दे दीजिए कि सामान खरीद कर दुकान में भर दे
कहाँ से लाई
क्या फर्क पड़ता है
फर्क नहीं पड़ता
अपनी गाड़ी से अपनी गाड़ी बेच दी कल सुबह नए मालिक को जाकर गाड़ी हवाले करनी होगी क्या गाड़ी थी बिल्कुल खटारा हो गई थी 25 तो मान दो और शहर के इस कोने से लेकर उस कोने तक आराम से चले जाओ ना पेट्रोल की परेशानी ना पार्किंग का झमेला ना पेट्रोल कार्ड की मुश्किल दुकान में सामान भरा होना चाहिए हेलो
हेलो पुणे तुम्हें पता है कि खुजस्ता कहाँ है
क्या क्या खुजस्ता अस्पताल में नहीं है
अगर होती तो तुम्हारा क्या ख्याल है मैं तुमको फोन करती
नहीं
उठो और यहाँ आ जाओ अकेलेपन की वजह से दिमाग फटा जा रहा है नहीं जानती कि कहाँ ढूंढूं आ जाओ
ये आदमी कौन है जो कहता है तुम्हारी बहन को पुलिस के पास गवाही दिलाने के लिए ले जाना चाहता हूँ ये क्या कह रहा है तुम किस खेल में पड़ गई हो ये घनचक्कर आदमी कौन है घर के दरवाजे पर जो दुकान से लेकर तुम्हारा सरनेम तक जानता है
मैं फरजीन हूँ तुम जानती हो कि मेरा कत्ल के सिलसिले में उनके साथ कोई लेना देना नहीं है मैं 15 किलोमीटर पैदल दौड़ा हूँ तब कहीं जाकर उनके जंगल से छुटकारा पा सका हूँ
पैसा मोबाइल पर्दा याकूत मेरे शौहर का कत्ल क्यों पुना ऐसा भी नहीं है
फिर कैसा है ये पर्दा याकूत औरत का नाम है या मर्द का हाँ तुम्हारा ऐसे लोगों के साथ क्या वास्ता है मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारा ऐसे लोगों के साथ क्या काम है
अंदर चलते हैं बात करेंगे यहाँ हमारे आसपास बहुत फालतू लोग हैं
अंदर आओ
प्लीज।
पर्दा याकूत जो कि हमारे बहनोई है, प्रोडक्शन यूनिट चलाता था, इसको बंद कर दिया था, मतलब कई पार्टनर थे जिनकी आपस में नहीं बनी। मैंने भी जब देखा इसकी यूनिट का ये हाल है
तो वहां से निकलकर पोल्ट्री फार्म में चला गया। रात को चौकीदारी का काम करता था और पोल्ट्री फार्म की देखभाल करता था।
एक दिन पर्दा याकूब मेरे पास आया और बोला, एक ऐसी जगह ढूंढ रहा हूं जहां एक आदमी को छुपाना है कुछ दिनों के लिए। उसके बाद बोला, एक आदमी है जिसने गैर कानूनी काम किया है और अपने पार्टनरों को धोखा भी दिया है। मैंने भी पैसा देखकर कहा कि ठीक है, मैं साथ दूंगा। 10 दिनों के लिए पोल्ट्री फार्म का मालिक भी नहीं था। अलबत्ता पर्दा याकूब ने मुझसे कहा था 10 दिनों में काम पूरा हो जाएगा, मतलब ये कि हमारा काम चल पड़ेगा। उसके बाद ऐसा लगता था कि अहमद रजा को लाश की तरह लेकर आए और पोल्ट्री फार्म में ठूस दिया। मैं डरा हुआ था मगर इतना ज्यादा भी नहीं। मैंने सोचा चूंकि अहमद रजा खुद गलत आदमी है इसलिए इसे ढूंढने तो कोई आने वाला नहीं है। चौथे दिन की रात को जब उस वक्त आग नहीं लगी थी, अहमद रजा की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। मैंने सोचा कहीं मर ना जाए और हमारे लिए मुसीबत खड़ी ना हो जाए। ऐसा लगता है उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए हम लोग फरामर्जी को बुला लाए। ठीक उसी रात अचानक नींद से उछल पड़ा। गर्मी इतनी ज्यादा थी, आग ही आग थी, सब जगह आग फैली हुई थी। मैं बाहर भाग आया।
आग!
मैंने देखा वो ड्राइवर जो पोल्ट्री फार्म में दाना लाया करता था बाहर खड़ा था।
आग, आग, वो जल रहा है।
मैंने कहा, अहमद रजा जल रहा है। मैं दौड़ा, याकूत ने मेरा रास्ता रोक लिया।
आग लगी है, आग बुझाओ, बुझाओ।
मैंने कहा, अहमद रजा। उसने कहा, मुंह बंद कर। कहा, आग। कहा, चुप रहे, चुप रहे। उसने कहा, हमसे कोई मतलब नहीं है। कहा, 3 पार्टनर हैं, सब एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। पर्दा याकूत ने कहा कि जहां पर आग लगी थी वहां पर जाकर खड़ा हो जाऊं और बिल्कुल मामूली अंदाज में खड़े होकर सर पीटूं और चिल्लाऊं, आग आग आग। कई दिन बाद जब पुलिस पहुंची तो मुझे अंदाजा हुआ कि अहमद रजा मिल गया है, कोमा की हालत में पाया गया है। मैं बुरी तरह डर गया था। मैंने जाकर सारी बातें पर्दा याकूत को बताई। उसको कहा, पुलिस कहा, दर्द सर, वो अस्पताल गया था देखने के लिए कि अहमद रजा जिंदा है या मर गया। मैंने उसको कहा, आखिर तुम ये क्या मुसीबत मोल ले रहे हो। उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। करीब था कि अहमद रजा की बीवी हमारा गिरेवान पकड़ लेती।
तुम मेरे शौहर को पहचानते हो?
उन्होंने कहा, अहमद रजा को मरना होगा, यानी उसके पार्टनर लोग चाहते थे कि वो मर जाए। उन्हें डर था कि अगर वो नहीं मरा और कोमा से बाहर निकल आया तो सबको फंसा देगा और सब पकड़े जाएंगे, इसलिए अहमद रजा को खत्म करने के लिए उन्होंने फरामर्जी को भेजा, मगर वो कामयाब न हो सका। पर्दा याकूत से सुना के उन 2 पार्टनरों ने फरामर्जी को मार डाला ताकि उसको ढूंढते हुए पुलिस कहीं उन तक न पहुंचाए। मुझे डर ने घेर लिया, यानी मैं ऐसा नहीं हूं, पर्दा याकूत भी नहीं है, हम लोग दलदल में फंस चुके थे। निकलने के लिए जितना हाथ पैर मारते और भी फंसते जाते। तब मुझसे कहा गया कि जाओ अहमद रजा की बीवी की सहेलियों के पास जाओ। उसी वक्त हमसे कहा गया कि जाकर देखो उनमें से किसको अपने उस खेल में शामिल किया जा सकता है। उसके बाद उसी लड़की यानी पूना को इस खेल में घसीट लिया गया। उन्होंने कहा, हम लोग पूना को तैयार करें ताकि वो अहमद रजा का काम तमाम कर दे, क्योंकि वो अहमद रजा की बीवी की दोस्त है और ICU में आसानी से अपना काम कर सकती है। ये तय हुआ कि धीरे धीरे उसको इस काम के लिए तैयार किया जाए, यानी कि पहले उसको पैसा देकर लालच में डाला जाए। उसके बाद मैं तंग आ गया था, पर्दा याकूत भी तंग आ गया था, लेकिन वो आखिर तक शामिल रहना चाहता था मगर मैं नहीं चाहता था। उसने मेरे हाथ पांव बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया। मेरी माँ की कसम, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, यानी मैं यही कहने आया हूं कि मैं इसमें शामिल नहीं हूं। उस लड़की की भी पहचान करा दी ताकि उसकी बरादरी का हक अदा कर सकूं। खुदा की कसम मैं इस किस्म का आदमी नहीं हूं।
तो तुम्हारा यह कहना है कि अहमद रजा बाबाई का कोई पार्टनर भी था और उसका पार्टनर उसको मारना चाहता था, क्यों? ठीक है, ठीक है या नहीं?
मेरे ख्याल में ऐसा ही है। हाँ,
मोहतरमा, आप ठीक हैं?
हैरान हूं, हैरान।
वाकई मजा आ गया,
वल्लाह बहुत ही मजा आ गया।
वाकई
तुम लोगों के आने से प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा,
इंतजाम भी बहुत अच्छा था। खुश रहो,
खुश रहो, सलामत रहो। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुशामदीद, खुदा हाफिज।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज,
खुदा हाफिज, खुशामदीद।
क्या हुआ?
हाँ, मेरा गला रुंधा जा रहा है, सांस अटक रही है, और तुम हंसो, हंसो और कहो अच्छा तुम।
अपने साथ ऐसा मत करो, इस तरह खुद पर दबाव और तनाव डालोगी और इधर उधर भाग दौड़ करोगी तो हमारे बच्चे को मुसीबत में डाल दोगी।
मुझे चिढ़ाने के लिए हंस रहे हो ना?
हंस रहा हूं तो हंस रहा हूं। हमारी शादी वाली रात जब तुम बेहोश हो गई थी और मेरी माँ चिल्ला रही थी कि मेरी बहू तो बेहोश होने वाली निकली, तब भी तो मैं हंस ही रहा था। ये हंसने वाली बात ही है ना, तुम्हारे बकौल मैं काला कलूठा हंसमुख हूं? तुमने मान लिया पागल कहेगी।
यकीन? अब यकीन की बात नहीं रही, रोज सनद पर सनद, शाहिद पर शाहिद, बात पर बात तुम्हारी हर जेब से एक पार्टनर निकल रहा है।
तुम बहुत ही बेमुरव्वत हो, बेमुरव्वत हो।
बस एक बात, लोगों की बर्बाद हुई दौलत में तुम शामिल हो या नहीं?
तुम्हारा दिल क्या कहता है?
मेरा दिल?
सलाम। बाबक वापस नहीं आया?
मैं ढूंढ नहीं सका।
मैं क्या बोल रहा हूं जनाब समसामी, एक सवाल। जब बाबक अपने बाप को माफ नहीं कर पाया तो मैं ये काम क्यों करूं? मैं जो कि असल सताया हुआ हूं, मैं कि जिसकी मां को छीना गया और खानदान को भी, क्यों हकीकत में इस बारे में आपकी क्या राय है? मेरे अंकल के बारे में आप ये बताएं, अगर मेरी जगह आप होते तो अपने जहन में कितनी बार दिन में उनका खून करते, किस तरह कत्ल करते? हाँ जरूरी है, असल में ये आग सहरा के कत्ल की है। हाँ जनाब समसामी, 70 किलो के एक आदमी को गैस के चूल्हे पर रखकर कबाब तो नहीं किया जा सकता ना? हाँ किया जा सकता है। आप उसके कत्ल का मंसूबा प्लेट में बना रहे थे या सहरा में? मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं जनाब समसामी, कोशिश कर रहा हूं कि अपने चचा की या अपने ससुर की बात को मानूं। कह रहे थे कि तुम्हारी मां तुम्हारे बाप के सदमे में पागल हुई, ये मान लूं? आप जानते हैं ये काम मैं क्यों कर रहा हूं? ये इश्क का मामला है। हां इश्क का, ऐसा इश्क जो सब चीजों पर हावी हो जाता है, रंग कर देता है, काले को उजला कर देता है, बुरे को अच्छा बना देता है, खुली आंख को बंद कर देता है, बंद आंख को खोल देता है। हां मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं।
मैं चाहता हूं कि
आप इस घर के लिए कुछ काम करें, मेरे लिए कोई काम करें। जब इस घर के लोग हंसेंगे तभी मेरी बीवी भी हंसेगी। ये वही इश्क है जिसकी दास्तान मैंने आपको बताई। मैं चाहता हूं कि आप मेरे चचा मेरे ससुर से बात करें और उनको इस बात पर राजी करें कि 2 दिन बाद यानी शबे जुमा को निकाह की रस्म अंजाम पाए। मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें राजी करें, रोया की भी यही ख्वाहिश है। बराए मेहरबानी।